ओम शांति। दसवीं कला कल्याण कला और सेवा कला, द आर्ट ऑफ डूइंग सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर। इसको पढ़कर शायद कोई व्यक्ति सोचेगा कि क्या यह भी कोई कला है, परंतु गहराई से सोचने पर हर कोई इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वास्तव में यह एक बहुत बड़ी कला है। यह कला तो कोटि कोटि मनुष्यों से किसी अति महान ही के जीवन में हम देख पाते हैं। आज इसी कला से ही तो सभी मनुष्य हीन हो गए हैं, तभी तो वे एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। एक महात्मा गांधी में सेवा भाव था, तो देखिए कि उन्होंने एक बड़े जनसमूह को साथ मिला लिया। परंतु सेवा कला तो सेवा भाव से भी उच्च प्रतिभा है, क्योंकि कला तो किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने, किसी विद्या में निपुण होने और किसी गुण में सिर मौर होने, किसी विशेषता का मालिक होने का वाचक है। कई लोग अपने प्रारंभिक जीवन में सोचते हैं कि बड़े होकर हम फला भला काम करेंगे अथवा जन कल्याण का अमुक कार्य साधेंगे, परंतु कुछ ही समय में वे स्वयं भी समाज के दूषित वातावरण में रंग जाते हैं, जिसमें यह कला होती है वे सिद्ध हस्त होते हैं और धुन के पक्के तथा अति मानसीय जीनियस होते हैं। कोई भी भला कार्य करने में बहुत परीक्षाएं तो पार करनी ही पड़ती हैं। जो कठिनाइयां सामने आती हैं उन सभी का हल निकालना पड़ता है, निंदा भी सुननी पड़ती है और कदम कदम पर मरना पड़ता है, झुकना पड़ता है। अतः सभी परिस्थितियों में सबका न केवल भला सोचना बल्कि उनके कल्याण के लिए कुछ ठोस कार्य करना, अपना तन मन धन लगाना, त्याग नम्रता सहनशीलता निस्वार्थ भाव और शुभ चिंतन की साक्षात चेतन मूर्ति होना और सेवा कार्य को स्थान तक ले जाना, यह कुछ महत्व रखता है और इसके लिए कई गुणों की तथा काफ़ी शक्ति और कुशलता की आवश्यकता है। यह तो इस कला का स्वामी ही कर सकता है, जिसमें यह कला जितनी अधिक हो वह उतना ही अधिक महान माना जाता है। हजरत ईसा ने, बुद्ध ने तथा अन्य अन्य धर्म स्थापकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से कुछ भलाई करने का विचार तथा कार्य किया, परंतु इतिहास बताता है कि उन्हें उसके लिए काफी कुछ सहन करना पड़ा। जितनी हम भलाई करने चले, जिनकी हम भलाई करने चले, यदि वे भी हमारा विरोध करें और हम पर अत्याचार करें तो बताइए कि हमारे मन पर क्या गुजरेगी। परंतु उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तभी तो वे महान कहलाए और लोगों ने उनको अपने हृदय में स्थान दिया। परंतु उस कार्य के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि संसार के लोग विषय विकारों में गोता खा रहे हैं। अतः कोई चिरस्थायी कल्याण कार्य करना तो एक बहुत बड़े कला के स्वामी ही का कार्य हो सकता है। उसे ही मनुष्यों में ब्रह्मा कहा गया है और जब कभी किसी को कोई बात मनवाने तथा किसी को सद्बुद्धि देकर उसका कल्याण करने की बात आती है तो लोग कहते हैं अगर ब्रह्मा उतरकर आ जावें तभी इसका कल्याण हो सकता है। इसका भाव यह हुआ कि परमात्मा के बाद ब्रह्मा में यह कला सर्वाधिक होती है। यूं तो माता पिता अपने बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं और वे उनकी सेवा भी करते हैं, परंतु आप लोग देखते हैं कि कई बच्चे बड़े होकर संस्कारी, पावन, उच्चाशयी और चरित्रवान सिद्ध नहीं होते। शिक्षक चाहते हैं कि शिष्य महान बने, परंतु उनका भी यह मनोरथ और प्रयास सफल नहीं होता। गुरु यत्न करते हैं कि उनके शिष्य साधु स्वभाव के बने और नेता भी चाहते हैं कि वे समाज का उत्थान करें, परंतु आज आप परिणाम यह देखते हैं कि ब्लैक मार्केट, मिलावट, रिश्वत, झूठ, छल प्रपंच ही समाज के सूत्रधारी बने हुए हैं। चाहने पर भी माता पिता, शिक्षक, गुरु, नेता आदि आदि कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण यह है कि उनके अपने जीवन में शक्ति, उच्च संस्कार या महान चरित्र अथवा सेवा भाव या मानव स्वभाव आदि की कमी है, अर्थात वे इस कला में निपुण नहीं हैं। सबका कल्याण करने की कला तो एक परमपिता परमात्मा में ही है। इसी कारण से उनका तो नाम ही शिव अर्थात कल्याणकारी है। उन्हें ही माता पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु तथा लोकनायक आदि संबंधों से त्वमेव मातश्च पिता आदि छंदों द्वारा याद किया गया है, क्योंकि वे ही इन संबंधों को सम्यार्थ एवं सद्गुणपूर्ण रीति से निभाकर कल्याण करते हैं। उनके बाद मानव सृष्टि में साकार रूप में प्रजापिता ब्रह्मा ही ऐसे हैं जिनको जगत पिता, ज्ञान का आदिदाता, श्रेष्ठ गुरु आदि के रूप में भक्त लोग भी याद करते हैं, क्योंकि वे ही शिव के साकार माध्यम के रूप में जगत कल्याण का कार्य अथवा सेवा करने में कला कौशल संपन्न सिद्ध हुए। हमने स्वयं अनुभव किया है कि उनका हर संकल्प, हर वचन, हर कदम लोक कल्याणार्थ होता है। इस कला वाले की पहचान। आप ध्यान करने पर आप देखेंगे कि दूसरों के कल्याण का कार्य तो वही कर सकता है जिसकी अपनी स्थिति उच्च हो। दूसरों की सेवा में वही सफल हो सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो। अतः वह कला आत्मिक शक्ति और दिव्यता का सूचक है। यह कार्य वह कर सकता है जो इतना महान हो कि वह दूसरों का शुभ चिंतक हो, सदा सबका भला चाहे और सचमुच जिसका मन सर्वे भवन्तु सुखिनः के संकल्प से ओतप्रोत हो। चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला, यही उसकी उत्कट अभिलाषा अथवा हृदय की वाणी वीणा हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह उसका केवल नारा नहीं विचारों का ताना बाना हो, वही कल्याण का कार्य करने में सफल सिद्ध हो सकता है। मैं सर्व के कल्याण का कार्य कैसे करूं? यह शुभ चिंतन निरंतर उसकी अंतर आत्मा में ऐसा चलता ही रहे मानो उसका मन इन्हीं विचारों से निर्मित हो, दूसरा वह कुछ सोच ही ना पाता हो। अपकार करने वालों का भी उपकार करता है, निंदा करने वालों को भी मित्र मानता है, कृतघ्न से भी घृणा नहीं करता, बस सबकी सेवा सेवा और सेवा ही करनी है, यही उसकी बात यही उसका संकल्प हो। जिनकी सेवा करनी है उनको अपने मन रूपी नेत्र के सामने ला लाकर वह कहे, शिव भाबा इनकी बुद्धि का थाला खोल दो, ताकि उसकी आत्मा भी जाग उठे और अपने जीवन को उच्च बना ले। वह उनके अवगुणों को न सोच, उनके किसी गुण से, प्रेम से, आत्मीयता से निकट संबंध स्थापित करके, हित वचन कहकर, मित्र भाव से समझाकर उनका उद्धार करा ही डाले। देखिए कितनी बड़ी लगन, कितनी तेज रफ्तार और कितने बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। किसी में भगवान के प्रति लगन पैदा करने के लिए पहले अपनी लगन का पक्का होना जरूरी है, दूसरे को मगन करने के लिए स्वयं मगन होना आवश्यक है, अन्य को गति देने के लिए अपने में गतिमता होना नितांत आवश्यक है। इस कला के लिए निम्नलिखित गुण होना जरूरी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस कला के लिए मुख्य रूप से इन गुणों अथवा विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन और शुभ कर्तव्य। दूसरा, लोक संग्रहार्थ सत्कर्ता और अपने जीवन का निरंतर सुधार। तीसरा, उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक हर्षोल्लास पूर्ण चेहरा। चौथा, परिस्थितियों का सामना करने की सूझ सामर्थ्य और सात्विकता। पांचवा, अटूट निश्चय, अदम्य हिम्मत और अथक कार्य प्रवृत्ति। छठा, उदारता। सातवां, त्याग। आठवां, नम्रता। नवा, निमित्त भाव। दसवां, आदर्श जीवन। ग्यारहवां, आत्मविश्वास। बारहवां, पक्की धुन। स्वाभाविक बात है कि जो सदा दूसरों का शुभ सोचता होगा उसकी बुद्धि ही जन कल्याण की कोई योजना बनाने में तत्पर होगी और शब्द तथा हाथ कल्याण करने के लिए प्रवृत्त होंगे। पुनश्चः जो दूसरों का कल्याण अथवा उत्थान करना चाहता है वह सदा लोक संग्रह का ख्याल रखेगा, अर्थात वह ध्यान रखेगा कि मनसा वाचा कर्मणा उससे ऐसा कुछ ना हो जिसे देखकर यदि दूसरे भी वैसा करने लगे तो उनका पतन हो अथवा अकल्याण हो। अतः वह आत्म उन्नति पर ध्यान देगा, अपने जीवन के बारे में सतर्क रहेगा, स्वयं की भूलों को सुधारता चलेगा तथा यदि कोई भूल हो तो खुल्लम खुला उसे भूल मानेगा ताकि दूसरे उसे गुण मानकर उसका अनुकरण न करने लगे। वह हर परिस्थिति में सात्विकता ही का प्रयोग करेगा, वरना अन्य किसी भी निकृष्ट उपाय से तो उत्थान हो ही नहीं सकता, न ही दूसरों पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। अतः उच्च लक्ष्य की सिद्धि के लिए वह आत्मिक बल, प्रभु की सहायता तथा सद्गुणों के व्यवहार ही पर निर्भर करेगा और उसमें आत्मविश्वास को नहीं छोड़ेगा। फिर यह भी निश्चित है कि सेवा करने के लिए त्याग, उत्सर्ग और उदारता की आवश्यकता है, परंतु ये सभी गुण मनुष्य में योग द्वारा ही आ सकते हैं। जब कल्याणकारी शिव परमपिता परमात्मा से बुद्धि की लगन लगी होगी, तभी मनुष्य के मन में दूसरों का कल्याण करने की लगन पैदा होगी। उसके लिए कोई उपाय भी सूझेगा, सामर्थ्य और सफलता भी मिलेगी। जब मनुष्य देह भान छोड़ेगा, दिव्यता को ही प्रभु से प्राप्त संपत्ति मानेगा, तभी उसमें त्याग, उदारता, दानशीलता अथवा सेवा भाव पनपेगा। तभी उसका जीवन निर्मल एवं उच्च भी बनेगा और वह कार्य क्षेत्र में उतरकर अपने सात्विक जीवन से दूसरों में सात्विकता को भरेगा। अतः इस कला को प्राप्त करने के लिए भी परमपिता परमात्मा शिव ही से योग युक्त होना चाहिए। ओम शांति।